राम राम हरि हरि। बोलो श्री गुरु जी महाराज की जय। गुरु परंपरा की जय। अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सपार्षद गौर हरि की जय। गौर नित्यानंद प्रभु की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा संजीव की जय। तदीय गुंडीचा मंदिर मार्जन महामहोत्सव की जय। वृंदावन धाम की जय। ब्रजवासी भक्त वृंद की जय। ब्रजश्री मधेश्वरी प्रणेश्वरी श्रीमती राधारानी की जय। ब्रजदेवीगण की जय। गौर प्रेमानंदी। अभी तक हम लोग वैष्णव से गुरुवर्गों के विचार और वैशिष्ट्यों को कुछ श्रवण कीर्तन करने का सौभाग्य लाभ किया। चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेकर के क्षेत्रमंडल जगन्नाथ धाम में आकर के विराजमान हुए तो प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों लोग जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं, क्योंकि रथ यात्रा का नाम पतित पवन घोष यात्रा। जगन्नाथ जब अंदर में शिव मंदिर में विराजमान रहते हैं तो सब लोग के वहाँ संभव नहीं है जाकर के उनकी सेवा करें या उनके दर्शन करें या उन्हें कृपा लाभ करें, तो जगन्नाथ स्वयं ही बाहर आते हैं, सबको दर्शन देते हैं, सबको कृपा करते हैं, सब सब सेवा का सुयोग देते हैं। और जीव प्राणी मात्र जगन्नाथ जी कृपा को वो लोग प्राप्त करते हैं या ग्रहण करते हैं। जगन्नाथ जी बड़े दयालु हैं, इसलिए इस यात्रा का नाम पतित पवन घोष यात्रा। वो कभी कभी चलते चलते तीन तीन दिन रास्ता में ही रह जाते हैं, कभी जाकर गुंडिजा के सामने ही विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग पतित है अर्थात जिनको शिव मंदिर में प्रवेश अधिकार नहीं देते हैं, जगन्नाथ स्वयं उन लोगों को भी कृपा करने के लिए भारी विराजमान रहते हैं। वहाँ दिखाते हैं कि देखो जो लोग 11 महीना उनकी सेवा करते हैं उनको छोड़ के और किसी को कृपा करने के लिए खुद बाहर आ जाते हैं, फिर भी इनको अकल नहीं है कि इन लोगों को भी प्रभु के सेवा के लिए सुयोग देना चाहिए। किंतु जगन्नाथ बड़े दयालु हैं। अभी सब बात हम लोग आगे सुनेंगे। और महाप्रभु देखते हैं इतने लोग आते हैं, जगन्नाथ जी के साथ किसी का संबंध तो है नहीं, वो लोग आते हैं अपने कुछ कल्याण के लिए और फिर पुनः लौट के चले जाते हैं। किंतु कैसे उनका कल्याण होगा वो तो जानते नहीं। तो महाप्रभु जब गंभीरा में विराजमान है, महाप्रभु एक दिन काशी मिश्र जो राजगुरु और जगन्नाथ जी के राजा का पुरोहित सार्वभौम पंडित गोपीनाथ आचार्य दानीनाथ आदि सबको बुलाया, बुला कर कहते हैं कि देखो कल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, तो अब जगन्नाथ जी आएंगे विराजमान होंगे, उनका पति पवन यात्रा है, तो अभी हम जिस गर्भ मंदिर शिव मंदिर गुंडीचा हम अर्जन करेंगे। तो बोले राजा प्रतिवर्ष अपने सेवकों को भेजते हैं, नौकर चाकर जाके साफ सुथरा करते हैं और वहाँ सुंदर सजाते हैं, तब जगन्नाथ जी पधारते हैं, विराजमान होते हैं। वहाँ आईटूटा है, बहुत सुंदर गुंडीचा जी के बगीचा है, फल फूल उद्यान बहुत विशाल, आज जैसे ईंट पत्थर का दीवार का शहर नहीं। उस समय समुद्र से लेके गुंडीचा तक पूरा बागान बगीचा सुंदर है। तो राजकर्मचारी साफ सुथरा करते हैं। तो महाप्रभु के लिए सार्वभौम पंडित और काशी मिश्र बोले, ये काम आपका नहीं है, आप सन्यासी हैं, ये काम आपका नहीं है, ये नौकर चाकर का काम है। महाप्रभु उस समय कहते हैं, हैं नौकर चाकरों का जो वृत्ति है वो सेवा वृत्ति नहीं है, वो तो पैसे का नौकर है, वो ड्यूटी देके चलाएगा, उनके अंदर तो प्रीति नहीं है, वो तो एक जिम्मेदारी उनके ऊपर दिया जाता है तो जैसे तैसे करके उसको निभाते हैं। तो ऐसे नहीं, किंतु उनको और कुछ कहा नहीं। तब स्वर्ग दामोदर आदि महापुरुष जो रावण द्वारा पार्षदों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों बोलते, देखो अपनी आचरित धर्म सिखामु सवारे, अपना कोयले धर्म सिखाना न जाए। मैं अपने आप यदि खुद आचरण नहीं करता हूँ और मैं किसी को सिखा नहीं सकता हूँ, यदि मैं खुद ही भगवान की सेवा नहीं करता तो दूसरे को कहूँगा सेवा करना चाहिए, वो कोई करेगा नहीं, उनको रुचिकर नहीं होगा। उस समय स्वर्ग दामोदर प्रभु आदि कहते हैं कि नहीं, ये काम हम लोग करेंगे, आपको नहीं जाना है। तब महाप्रभु क्या कहते हैं, कहते जितने साधक है उनके हृदय को मार्जन करना है, किंतु यदि एक व्यक्ति को पकड़ करके बोला मैं तुमको साबुन शैम्पू तेल या ऑप्टन सब देकर साफ सुथरा करके सुंदर सजाऊं, तो भले ही वो सेवा स्वीकार कर ले, किंतु चमड़ी दमड़ी को तो साफ सुथरा कर सकता है, किंतु अंदर के जो आत्मा के ऊपर ये गंदगी का ढेर जमा हो गया, अनर्थ असतृष्णा स्वरूप मृद दुर्बल अपराध प्रारब्ध प्रारब्ध कूट पापी जविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश लय विक्षेप कसाय अप्रतिपत्ति रसस्वाद, कितने प्रकार के अनर्थ पाप इतने जो इकट्ठा कर लिया, वो साफ सुथरा करने के लिए कौन सा उपाय है। आज यदि कहो ये तुम पापी हो, भ्रष्ट हो, दुराचारी हो, नीच हो, तुम्हारे अंदर अनर्थ से भरे पड़े हुए हैं, बिगड़ जाएगा, तुम पापी इससे मुझे पापी बोलते हो, तुम दुष्ट है तुम मुझे दुष्ट बोलते हो, तुम भ्रष्ट व्यभिचारी दुराचारी इससे मुझे ऐसे बोलते हो, वो नहीं सहन करेगा, कोई नहीं सहन कर सकता। सबको चाहिए बाबाई और पूजा प्रतिष्ठा ग्लोरीफाई, उनकी बस महिमा का गान करो, वाह तो खुश और प्रसन्न, कितना खिला पिला के खुश नहीं कर सकते किसी को कुछ दे लेके, किंतु उनके महिमा का गान करो ना, वाह। क्योंकि प्रतिष्ठा कामी लोभी लालची बदल सकता है, प्रतिष्ठा कामी नहीं बदल सकता है, ये कुटीनाटी है, कपटता है, छिपा करके कुछ छिपे रुस्तम कुछ छिपा करके ऊपर से कुछ दिखाता है, कहना चाहता है और सबको समझाना चाहता है, ऊपर से ढक करके अपना दिखाता है। तो महाप्रभु कहते हैं ये लोग चिकने खड़े हैं, बदलेंगे नहीं, सुनेंगे सबकी, करेंगे अपनी मन की, बोले सबकी बात सर पर पंचों की बात खूंटा मेरा वहीं रहेगी, मैं करूँगा अपनी मन की, सुनूंगा सबकी, किंतु करूँगा नहीं। तो ये इतना जिद्दी है, हटी है, ये जीवों को इतना आसानी से कोई नहीं बदल सकता। इससे कहते हैं प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर, छोटा बच्चा घर में है, चल फिर रहा है, अभी चलना सीख गया, तो देखा घर के कोने सिगरेट का टुकड़ा पड़ा है, बीड़ी का टुकड़ा पड़ा है। देखते हैं उसके पापा आता है, यार दोस्त आते हैं, रोज़ सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, और चिलम लगाते हैं, क्या क्या चरस क्या क्या करते हैं। तो बच्चे ने क्या किया, टुकड़ों को इकट्ठा करके अब वो आँच में लगा के वो भी पीने लग गया। तो बोलते हैं उसके माँ दादी, ये नहीं पीना चाहिए। बोले पापा पीते हैं, क्या बढ़िया चीज़ है, क्यों नहीं पीऊँगा, हैं। अब उसको सुनता नहीं, अब तो उसका आदत हो गया, अब तो छोड़ता भी नहीं, इतना सा तो है। अभी आजकल देखते हैं ना, बच्चे जन्म लिया तो माँ क्या करती है, मोबाइल दे देती है, कार्टून लगा करके देखता रहता है। अब वो बोलना नहीं आता है, चलना नहीं आता है, उठना नहीं आता है, उंगुली से वो उसको मोबाइल को चला लेता है और कार्टून देखे, हंसता रहता है। उसको देखे खाना भी वही खाएगा वो कार्टून देखते हुए। तो ये जो जीवों का दुर्दशा हो गया है, ये नहीं बदलने वाला, इनको तो झाड़ू से सफा करना होगा। ऐसे नहीं अनर्थ जाता है। और यदि कोई झाड़ू लेके उनको सफाई शुरू कर देना, तो देखो कोर्ट कचहरी तो छोड़ो, महाभारत में क्या है, रंग है, उससे ज़्यादातर और रंग चढ़ जाएगा। बोल तो दो कुछ भी, झाड़ूदार को झाड़ूदार कह दो, तब भी देखो क्या आजकल का मजाल है, जाओ जेल में जाओ, झाड़ूदार क्यों कहा, जात पात की विचार क्यों करा, होगा नहीं। महाप्रभु कहते हैं यदि वो खुद झाड़ू देना नहीं सीखे, सेवा करना नहीं सीखे, तो सुकृति कहाँ से होगा, उसका चित्तवृत्ति बदलेगा कैसे। इससे मैं जब खुद करूँगा तो ये भी पीछे पीछे महाजनों जनों गत से बनता। महाजन जैसे काम करते हैं अनुजाई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े अर्धाली चमचे पीछे पीछे अपना चलता है। तो महाप्रभु जी ने बोला देखो, एक से घड़ छोटे छोटे मिट्टी के घड़ा पानी भरने के लिए, तो उसमें तो नल नहीं, टैप नहीं है कि बटन दबा दो या सेंसर है कि हाथ लगा दो पानी भर जाए, ऐसा तो है नहीं। वो किलोमीटर दूरी से कहीं कुआ है कहीं तालाब है, पानी लाना पड़ेगा, तो घड़ा चाहिए। और झाड़ू भी कम नहीं, सौ नहीं हजारों नहीं, कितना बाज़ार में जितना है, नहीं है तो व्यवस्था करो, सब्र लाना है। क्योंकि जब मैं चलूँगा, जो लोग मेरे पीछे पीछे चलने वाले हैं, राजा महाराजा रथी महारथी अतिरथी सारथी, जितने बड़े बड़े नामी ज्ञानी गुणी विज्ञानी, कितने बड़े बड़े आचार्य, छोटे मोटे हैं, परमानंदपुरी ब्रह्मानंद भारती ईश्वरपुरी के जितने गुरु भाई लोग, रंगपुरी एक से एक सब गोसाई आचार्य, जगन्नाथ जी पांडा पड़ीछा सुपकार दैतापति, जो अपने आप को भगवान से भी कम नहीं मानते, अपने भगवान से अधिक पूजा करवाते हैं, किंतु वो किसी की पूजा करता है कि नहीं, सेवा करता है कि नहीं। और जब तक सेवा नहीं करेगा, ममता कहाँ से होगा, संबंध कैसे होगा, जिसकी सेवा करेगा उसके साथ ही रिश्ता होगा, करेगा तो नहीं, बोलने से भी नहीं सुनेगा, कर सेवा कर कुछ नहीं, ये काम मेरा नहीं है। किसी समय गुरुजी कहते हैं ए भाई ब्रह्मचारियों को, तुम लोग कुछ सेवा कुछ तो करा करो। बोले क्या, मैं छोटे मोटे ऐसे घर की क्या हूँ क्या, और ऐसे मैं अनपढ़ क्या मूर्ख हूँ कि ये सब काम मेरे लिए हैं, मैं इससे मठ में आया क्या, ये सब काम मेरा नहीं है। तो कहते तो क्या करोगे, बोले प्रवचन करूँगा, मंदिर में पुजारी बनूँगा, ये सब काम हम नहीं करते, हम छोटे मोटे घर के नहीं हैं। तो बोले बढ़िया है भाई, तो तुम्हारा ये जगह नहीं है, ये तो छोटे मोटों के लिए है और गिरे हुए के लिए है, तुम जाओ कहीं और जाओ, जाओ सेठ साहूकार के पास जाओ, उनके पास जाकर तुम बॉस बनो, जाओ। तो महाप्रभु कहते हैं ये जो आत्माभिमान है ऐसे नहीं जाएगा, और यदि भगवान के लिए कुछ करेंगे नहीं तो संस्कार भी शक्ति भी कोई संचार करेगा नहीं। माया की सेवा करेंगे तो माया की शक्ति प्राप्त करेंगे, यदि भगवान की सेवा करेंगे तो भगवत शक्ति प्राप्त करेंगे, और जब तक तो उनकी शक्ति नहीं प्राप्त करेंगे तब तक तो उनकी सेवा या उनके तत्व के बारे में भी ज्ञान नहीं होगा ना। तब समय प्राकृत बुद्धि जड़ बुद्धि जाएगा ही नहीं। तब महाप्रभु जी ने सबको बुलाया कि काल सुबह गुंडीचा मंदिर हम जाएंगे, वहाँ बोलते हैं धोआ पकला, हम धोएंगे साफ करेंगे, सबको चलना है। महाप्रभु कभी कुछ तो बोलते नहीं, बोला तो सारे उड़ीसा नहीं, बंगाल बिहार जितने देश दुनिया के सब भक्त आए, सब बड़ा प्रसन्न। महाप्रभु ने व्यवस्था किया चंदन और माला, अपने आप ही अपने हाथ से सबको चंदन पहनाया माला पहनाया, अर्थात रुचि दे दी, सेवा वृत्ति दे दी, संचार कर दी, शक्ति संचार कर दी है। इच्छा तो किया तुमने, चलो अब मैं ताकत नहीं है और तुम्हारा शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, चलो मैं मदद करता हूँ। तो महाप्रभु सबको चंदन माला पहना दिया, पहना करके कीर्तन शुरू किया। अब कीर्तन तो सभी लोग करते हैं महाप्रभु के साथ, किंतु महाप्रभु कहते हैं केवल कीर्तन से नहीं होगा, जब तक कि ब्रज के किसी के अनुगत्य नहीं और उनके पास हम अपने को समर्पण करके कुछ सीखने के लिए उनका समर्पित नहीं होते, अर्थात उनका आश्रय नहीं लेते, तब तक सीखेगा कौन? अपने स्वतंत्र हो गया, माला ले लिया, जप करने लग गया, महाप्रभु बोलते होगा नहीं। बोलो कृष्ण बोलने से नहीं होगा, भज कृष्ण और करो कृष्ण शिक्षा, महाप्रभु ने तीन बात कही। नित्यानंद प्रभु को, हरिदास ठाकुर को, सबको जाओ घर में जाओ, क्या मांगो? भिक्षा मांगो, दाल चावल तेल मसाला पैसा कपड़ा लत्ता नहीं, सबको बोलो क्या? बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, यह वही आरना बोलीबा बोलाइबा, वे तीन शब्द के अलावा और कुछ नहीं बोलना, और कोई बोले तो सुनना नहीं, बोले बोलो कृष्ण बोलो, एक बार कृष्ण बोला तो फिर बोल देना उनको भजो कृष्ण, भजदातु सेवायाम, केवल कृष्ण बोलने से नहीं होगा, कृष्ण की सेवा करो, उनके साथ संबंध करो, फिर करो कृष्ण शिक्षा, जो उनके सेवक है भगवान की प्रिय है उनके निकट शिक्षा करो, कैसी सेवा करेंगे? बस तीन तीन ब्रह्मसूत्र एक सूत्र में संबंध अविद्या प्रयोजन तीनों बोल दिया है महाप्रभु का, ये ब्रह्मसूत्र है बस। क्या बोलो कृष्ण, बस कृष्ण बोला तो दीक्षा हो गया है। जो लोग जा रहे हैं बोल रहे हैं ना, आदेश दे रहे, बोलो कृष्ण बोलो, बोल दिया कृष्ण हरे कृष्ण, हो गया दीक्षा। अब भजो कृष्ण, अविद्या सेवा करो और शिक्षा करो, प्रयोजन तत्व को लाभ करो। तो महाप्रभु जी ने सबको बोल दिया, अब कौन सिखाएगा? ऐसे महाप्रभु अपने साथ लेके सबको लेके चला, एक दो नहीं कितना हजारों, और गुंडीचा मंदिर कितना है, छोटा सा है क्या? वो आब्रह्म हिमाचल से लेके समुद्र तक सभी तो महाप्रभु के पदांकित भूमि सब स्थान है, भगवान के सभी स्थान उनका है। बस भक्तों को आदेश दे दिया, झाड़ू लगा रहे हैं तो कोई धीरे धीरे करता है, कोई इतने से इकट्ठा किया, महाप्रभु अपने दुपट्टा को लेके अंचल में भर के 1000 10000 लोगों की अकेले एक टकली साफ करके वो बाहर पटक के आते हैं और महाप्रभु देखते कौन क्या कर रहा है। बोलते हैं देखो यदि तुमने कम थोड़ा सा किया ना, कम किया तो तुमको सब भक्तों के लिए भंडारा देना पड़ेगा। अर्थात मिट्टी वचनों से उनको शिक्षा देते हैं, शक्ति संचार करते हैं। वो क्या करता है, एक झाड़ू लेके बैठे बैठे यहाँ से वहाँ तक, आगे इतना भी नहीं चलना है, इतना इतना मगर ऐसे कम नहीं चलेगा। तुम्हारे अंदर रुचि नहीं है, तीव्रता नहीं है, उत्कंठा नहीं है, हैं बस आया सबके साथ दिखावा करने के लिए नहीं है, आत्मा से सेवा करो, चेष्टा करो सबको। फिर महाप्रभु घूम घूम के देखते हैं और महाप्रभु अकेले कितना कर रहे हैं सब देख रहे हैं। और महाप्रभु कहते हैं कि अब झाड़ू देने से नहीं होगा, छोटे छोटे धूली है, कंकड़ है, सबको बिनना है। अब बिनने के लिए लगा दिया। फिर बोलते हैं इससे भी नहीं हुआ, अब जाओ वो इंद्रधनुष सरोवर है, 1 किलोमीटर दूर है, लाइन से खड़े होकर के कलश भर करके एक के बाद एक देते जाओ और भगवान के नाम कीर्तन करो, भगवत कृपा करें कि मेरा सेवा स्वीकार हो और सेवा करने का प्रवृत्ति दें। नहीं तो हम सेवा करते हैं यदि प्रभु ने स्वीकार नहीं की है, इच्छा नहीं है तो। अब वो कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं और एक घड़ा एक भरते हैं तो इनको देते, आगे करते करते आ रहा है एकदम चैनल से। गुंडजा मंदिर पूरा धुआ पकला ऊपर से नीचे तक, तो महाप्रभु जी ने बोले कैसे धोना है, अपने मन को निर्मल करना है, आत्मा को पवित्र करना है, इतना सुंदर करो धो। और धोना शुरू हुआ, कीर्तन शुरू हुआ, उद्दंड नित्य कीर्तन हरिदार और कितना जल जम गया, चारों तरफ से सरोवर की तरफ भर गया। महाप्रभु उसका प्रणाली अर्थात नाले खुल नहीं रहे, क्यों, जितने भक्त हैं भक्तों के वो चरणों का जो चरणामृत धोवन जल है, जल है, सब तो यहीं इकट्ठा हो गया। अब जब नाली खोल दिया एकदम नदी की तरह स्रोत बहने लग गया, इतना इकट्ठा कर दिया। इसके बाद बोले अब पोछा करना है, सफाई करना है, शीतल सुंदर करना है। अब अपने अपने दुपट्टा लेके सब लोग पहुँच रहे हैं महाप्रभु। इतने में एक गौड़िया आकर के एक लोटा जल महाप्रभु के चरणों में डाल दिया। महाप्रभु बिगड़े, भगवान के मंदिर में इतना बड़ा मेरा अपमान है, इतना मेरा दुर्दशा कर दी है। महाप्रभु बोले स्वरूप तुम्हारा गौड़िया कैसा है, उन्होंने गले में धक्का देकर के वो एकदम बाहर करके आ गए। महाप्रभु कहते ऐसा मत करो, मंदिर के अंदर में गर्भ मंदिर में कभी भी गुरु के बिना किसी को प्रणाम भी नहीं करना चाहिए, कभी अपने पूजा नहीं कराना चाहिए, उच्च स्वर से बोलना नहीं चाहिए, उनका मर्यादा है। ये स्थान भगवत सम्मान के पूजा के स्थान है, आराधना के स्थान है, यहाँ पर अपनी पूजा मत कराओ। तो महाप्रभु उच्च संकीर्तन शुरू कर दिया और इधर सब लोग सफाई कर दिया। किंतु महाप्रभु इतना विरह में आविष्ट हो गए कि श्रीमती राधारानी जब सुना विश्वानुपुर में कृष्ण आ रहे हैं अपने सखाओं के साथ और ब्रजवासियों के साथ आ रहे हैं, उन्होंने दानगढ़ मानगढ़ भानगढ़ विलासगढ़ सब कुंज कुटीर एक एक चप्पा इतना सुंदर सजाया है, इतना सुंदर फूलों के सेज बिछाया। महाप्रभु उस चीज़ को स्मरण करते हैं, उस भाव में आविष्ट होकर के आज वो विश्वानपुर अर्थात गुंडीचा मंदिर को सजा रहे हैं। केवल मात्र फूल का सजावट करने से नहीं होगा, यदि हृदय यदि इतना सुंदर सरस नहीं हो तो वृत्ति नहीं है तो कैसे हैं? वृषभानंद महाराज ने निमंत्रण दिया, केवल नंद बाबा को नहीं, उधर जसोदा माता आदि सब लोग निमंत्रित है। भगवती पूर्णमासी जोगमाया वृंदा ये लोग एक रथ में हैं। बलदेव प्रभु अपने सखाओं के साथ एक रथ में हैं। कृष्ण अपने प्रिय नर्म सखा, पृष्ठ सखा, प्राण सखा, सुरित सखा उनके साथ एक रथ में है। तीन तीन रथ चल रहा है। कहाँ आ रहे हैं? वृषभानुपुर में। क्यों? श्रीमती धरणी को क्या हो गया? उनको उनके पास जहर चढ़ गया। क्या जहर चढ़ा? कि उनको काल सर्प ने दंशन किया। आप किस तरह से ठीक नहीं हो रहे हैं? उस समय विश्वान महाराज ने पूछा, कैसे ठीक होंगे? कोई उपाय है ठीक होने का? तब भगवती पूर्णमासी से जब पूछा, पूर्णमासी ने आदेश दिया, जाओ कृष्ण को ले आओ। कृष्ण ने कालियों को ब्रज से भगाया, विष से रहित किया और कालिया रथ मुक्त हैं। ब्रज को सुंदर रसमय कर दिया। तो अब कृष्ण को लाना पड़ेगा। जब कृष्ण को लेने गया, कृष्ण बोले, मैं नहीं जाता, मैं कोई पराई स्त्री, कोई बेटी कुमारी किशोरी मैं किसी के दर्शन नहीं करता, न देता और न किसी से मैं मिलता। किंतु जब ऋषभ महाराज पार नहीं पाए तो नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा बड़े दयालु हैं, प्रेमी हैं, वो भी जसोदा माता के पास गए। तो जसोदा माता कृष्ण को समझाने लग गए। इतने बलदेव प्रभु आ गए, बलदेव प्रभु को भी बस में कर ली और कृष्ण बहाना बजा रहे, मैं नहीं जा रहा। उस समय कृष्ण को मानने के लिए सखाओं को पकड़ा, फिर भी नहीं हुआ तो जो जुगमाया भगवती उन्हें आदेश दिया, ठीक है मैं चलती हूँ, तुम अकेले नहीं जाओगे किसी लड़कियों के पास, मैं चलती हूँ, मैं चलूँगी और यहाँ से रोहिणी जसोदा ये भी चलेंगे और मेरे साथ, और इधर बलदाव भी जाएगा, तुम अकेले नहीं जाओगे, चलो। तो तीन रथ सजा। वृषभानंद महाराज ने नंदगांव से वृषभानुपुर तक इतना सुंदर सजाया। अब कैसा किया? सखाओं के लिए नहीं, केवल सब ब्रज के लिए उन्होंने सुंदर उत्सव की व्यवस्था की। तो कृष्ण बोले, एक दिन से ये विष नहीं उतरेगा, नौ दिन नौ रात्रि चाहिए। तो कृष्ण नौ दिन नौ रात्रि जा करके वृषभानुपुर में, विलासगढ़ में, विलास कुंज में विराजमान हुए। जब श्रीमती रानी स्वस्थ हुए, वृषभानंद महाराज प्रसन्न हुए, सब लोग फिर नौ दिन बाद नंद भवन में लौट के आए। ये सब बड़े गंभीर ब्रज की लीलाएं हैं। महाप्रभु उस मरण में व्यस्त है, राधा भाव में। इन सबको लेके वो नित्य वृषभानुपुर की, वृंदावन की जो सेवा कुंज कुंज कुटीर है, उनको कैसे सजाएं? कैसे नित्य सेवा में इनको अधिकार मिले? केवल मात्र ऊपर से दिखा हुआ नहीं, केवल रथ खींच करके ले गया आ गया, ये सब खेल तमाशा में कुछ नहीं रखा है। ये साधन का केवल बाहरी एक स्वरूप है, किंतु आभ्यंतरीण जो रूप है वो महाप्रभु जी ने सबको कैसे, मैं चल रहा हूँ ब्रज में, मेरे साथ कौन कौन आ रहा है? इससे गोड़िया क्या करते हैं? कहते हैं जब पहले रथ होता है सब गोड़िया जाता है, जब दूसरा होता है तो नहीं रहता है, कहते उड़िया जाता है। किंतु महाप्रभु के समय महाप्रभु ने ऐसा नहीं कहा। महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण वृषभानुपुर में पहुँचे, अभी नंदभवन में आ रहे हैं, नंदगांव में आ रहे हैं। दोनों रथों में महाप्रभु जी जाते समय आते समय उद्दंड नित्य कीर्तन करके हाँ उनके साथ आते थे। तो गुंडीचा मंदिर मार्जन के लिए महाप्रभु जी ने सबको नियुक्त किया कि व्रत सेवा में मैं अधिकार दे रहा हूँ, और नित्य सेवा में एक दिन करके और मुक्त हो गए और सब इच्छा पूरा हो गया, अब आगे कुछ करना नहीं है, एक दिन की मेहनत है, ऐसा नहीं। प्रवेश अधिकार दे दिया, सेवा का अधिकार योग्यता दे दी, हैं अब शक्ति संचार कर दी, अब नित्य सेवा में नित्य लीला में नित्य धाम में बस नियुक्त हो गए। किंतु जो लोग महाप्रभु के साथ सम्मिलित थे, महाप्रभु के भाव में आविष्ट होकर के वो लोग सब तन्मय हो गए। जैसे अद्वैताचार्य प्रभु के पुत्र अच्युतानंद प्रभु, और बालक है छोटा, नृत्य कर रहे हैं, करते 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 कीर्तन करते करते मूर्छित हो गए। अद्वैत प्रभु नृसिंह मंत्र पढ़ करके कितना तो उनको उनके पर चरणामृत छिड़काव किया, तो होश नहीं आ रहे हैं। महाप्रभु जाकर के उनको स्पर्श करके फिर उनको जगा दिया और कीर्तन में सम्मिलित कर दिया। ऐसे जो वहाँ गुंडीचा मंदिर में महाप्रभु जी ने अपने जैसे सात्प्रिया भाव प्रकट किया, कहाँ शिवा संगम में सबको कृपा किया, ऐसे गुंडीचा मंदिर में ले जा करके किसी को महाप्रभु जी ने नहीं छोड़ा। वहाँ सात्प्रिया भाव था तो यहाँ महाप्रभु का रसराज महाभाव, यहाँ सबके पर देखा कौन सेवा करने आता है, देखा महाराज प्रताप रुद्र स्वयं, जो आजकल तो रथ के ऊपर केवल झाड़ू देते हैं, स्नान यात्रा के दिन आते हैं, गुंडीचा के दिन आते हैं, पहले राजा पूरा रास्ता सोने के मुठ्ठा है और नारियल के सिक्के झाड़ू, कितना झाड़ू पूरा रास्ता साफ करके जो भगवान के आगे जगन्नाथ के आगे और इत्र फूल छिड़काव करके उनको सेज बना के ले जाते, महाप्रभु सेवा देख करके प्रसन्न हो गए। इसलिए सेवा साधक रूपेण तब सिद्ध रूपेण चत्र ही चत्र ही अन्यत्र नहीं, अन्यत्र जागर तुम सिद्ध रूप प्राप्त करोगे ऐसा नहीं, अत्र यहीं। यदि साधक रूप में सेवा नहीं किया, सेवा और नौकरी एक नहीं है, ड्यूटी कर्तव्य और जो निष्कपट सेवा है ये दोनों प्रतिष्ठा कामियों के लिए वो समझ में नहीं आएगा। इसे महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर में प्रवेश अधिकार दे करके अपने आप नित्य सेवा का सब अधिकार दिया और सिखाया, एक एक के पास जा करके कैसे करना चाहिए सेवा। उस समय जब जगन्नाथ जी आते हैं, कितना हजारों लाखों लोग साथ आते हैं, कहते हैं आया और गया, क्या मिला, मेला देखने आया बस चला गया। महाप्रभु कहते ऐसे नहीं, जीवन का अमूल्य समय नष्ट नहीं करना है, ऐसे बर्बाद नहीं करना है, आया तो कुछ लाभ उठाओ। तो महाप्रभु जी स्वयं जब धुआ पकला अर्थात छाप वगैरह हो गया, तब महाप्रभु एक उच्च संकीर्तन शुरू की, आँखों के आंसू से पूरा दोबारा वहाँ पर ऐसा समुद्र की तरह तरंगायित हो गया। तब कीर्तन करते करते शाम हो गया, आई टूटा में आकर के विश्राम करने लगे। तो जगन्नाथ जी का तो 15 दिन नवसर काल भोग राग नहीं हुआ, आज नवजीवन दर्शन नेत्रोत्सव, आज जगन्नाथ जी दर्शन दिए हैं, आज पहले बार भोग राग लगा, तो क्या सारे भोग राग वाणीनाथ गोपीनाथ काशी मिश्र सार्वभौम पंडित महाराज प्रताप बुद्ध के अनुरोध से सब कुछ आईटूटा में ला करके भर दिया। महाप्रभु जी कहते कीर्तनिया परिश्रम, कीर्तनिया ने इतना परिश्रम कि अब उनके लिए जगन्नाथ जी ने सब प्रसाद भेज दी, तो अब उसका वर्णन दिया चैतन्य चरितामृत में कितनी तरह की सब कुछ हैं, महाप्रभु अपने हाथ से परिवेशन शुरू की। तब बड़े बड़े महाजनों ने महाप्रभु को बैठाया और परिवेशन किया। महाप्रभु कहते काल सुबह रथ यात्रा होगा, सभी लोग तैयार होके पाउंडी अर्थात जगन्नाथ जी को लाना है, रथ में चढ़ाना है, उनको लेके चलना है। उस प्रसंग हम लोग अब काल सुनेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।